بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ قرآن مجید کے سورہ یونس کی 47ویں، 48ویں اور 49ویں آیتوں کی تلاوت کا شرے پراپت کر رہے ہیں قاری قاسم رضیعی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكل أمة رسول، فإذا جاء بينهم بالقسط وهم لا يظلمون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور ہر سمودائے کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کے پاس ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ نیائے پوروک کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، और कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो ये धमकी कब पूरी होगी? कह दो, मुझे न तो अपने बुरे का अधिकार है न भले का, बस जो अल्लाह चाहे वही होता है। हर जाति के लिए एक नियत समय है, जब उनका नियत समय आ गया तो उससे न एक घड़ी पीछे रह सकते हैं और न आगे बढ़ सकते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, जनवरी की 30, जमादी सानी की 16 और बहमन माह की 11 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। हम पहले आपको समाचार सुनवाएंगे, समाचारों के बाद राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे, जिसके उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम पेश किया जाएगा ईरान भ्रमण, और सभा के अंत में एक दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, नया सवेरा। तो श्रोताओं, ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारे इन कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, पता है parstoday.com/hi। अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है। अब आप मरियम मेहरदादी और कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। राष्ट्रपति ने कहा कि ईरानी राष्ट्र ने तानाशाही और साम्राज्यवाद को एक साथ धूल चटा दी है। ईरान ने कहा कि परमाणु समझौते में सऊदी अरब की कोई जगह नहीं है। साजिशों के बावजूद ईरान व इराक संबंधों में विस्तार हो रहा है। भारत में इसराइली दूतावास के निकट साधारण धमाके पर प्रतिक्रियाओं का क्रम जारी है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए।
रूहानी ने कहा है कि ईरान ने प्रतिरोध और एकजुटता के साथ साम्राज्यवाद और तानाशाही को एक साथ धूल चटा दी। राष्ट्रपति रूहानी ने शनिवार को कहा कि एक राष्ट्र ने प्रतिरोध और एकजुटता द्वारा साम्राज्यवाद और तानाशाही दोनों को ही धूल चटाई, और ईरानी नरेश शाह तथा अमेरिका एवं साम्राज्यवादियों को एक साथ देश से खदेड़ दिया। राष्ट्रपति रूहानी ने इस्लामी क्रांति की सफलता को इतिहास की एक अभूतपूर्ण घटना बताया। उन्होंने कहा कि हजारों साल के बाद ईरानी राष्ट्र ने जर्जर शाही व्यवस्था और साम्राज्य का अंत किया और उसके स्थान पर एक धार्मिक प्रजातांत्रिक सरकार की स्थापना की। याद रहे कि 1 फरवरी 1979 इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी 15 वर्षों तक देश निकालने के बाद ईरानी जनता के उत्साहपूर्ण स्वागत के मध्य ईरान वापस लौटे थे।
ईरान की संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि तेहरान परमाणु समझौते में सऊदी अरब की भूमिका को नहीं मानता। अबुल फजल अमोई ने परमाणु समझौते या JCPOA के नए सदस्य के बारे में कहा कि इसके सदस्य स्पष्ट हैं, जिसका उल्लेख प्रस्ताव संख्या 2231 में है। ऐसे में JCPOA में सऊदी अरब के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इस बात की घोषणा कर दी है कि रियाज के साथ तकनीकी वार्ता की जा सकती है और वो मुख्य मुद्दा जिस पर सऊदियों के साथ पटल पर रखा जा सकता है वो उनके द्वारा हथियारों की खरीद और यमन की जनता के विरुद्ध उनकी कार्रवाइयाँ हैं। अबुल फजल अमोई का कहना था कि इस समय ईरान प्रतिबंधों को निष्कर्ष बनाने की नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु समझौते के बारे में यूरोपियों के क्रियाकलाप व्यर्थ रहे हैं।
तुर्की के विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि सीरिया के नए संविधान के प्रारूप से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में ईरान, रूस और तुर्की के बीच सहमति हुई है। तुर्की की टीआरटी वेबसाइट के अनुसार सीरिया के नए संविधान के प्रारूप से संबंधित पांचवें चरण की बैठक में रूस, तुर्की और ईरान ने सीरिया की संप्रभुता और अखंडता के प्रति अपनी कटिबद्धता का ऐलान किया। इन तीन देशों ने इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के विशेष दूत के साथ लगातार संपर्क पर भी सहमति का ऐलान किया। ईरान, तुर्की और रूस ने बल दिया है कि वे 16 और 17 फरवरी को रूस के सूकी में वार्ता करना चाहते हैं। याद रहे कि सन 2011 में सीरिया संकट आरंभ हुआ था।
इराक ईरान के साथ एक नई सीमा खोलना चाहता है। इराक के बासित प्रांत के सूचना विभाग के अधिकारी ने शनिवार को बताया कि इस प्रांत से ईरान के लिए एक नई सीमा अशाबी खोली जाएगी। इन नई सीमा के खुलने से जहां पर मेहरान सीमा से भीड़ भाड़ कम होगी वहीं इराक के वासित प्रांत की आय का एक नया स्रोत खुलेगा। यह नया बॉर्डर वासित प्रांत के कूत नगर के दक्षिण में है जो ईरान के इलाम प्रांत से मिलता है। वासित प्रांत के सूचना विभाग के अधिकारी अल एथावी ने स्पष्ट किया कि 40 किलोमीटर के इस रास्ते का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और वो यातायात के लिए तैयार है। इस रिपोर्ट के अनुसार इराक का नया बॉर्डर ईरान के ज़रबतीय बॉर्डर से 70 किलोमीटर दूर है। उन्होंने बताया कि इराक की ये नई सीमा पवित्र नगरों करबला और नजफ से निकट है।
यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने सऊदी गठबंधन को हथियार न बेचने के इटली के फैसले का स्वागत किया है। फार्स के अनुसार यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन ने एक बयान में कहा है कि यमन पर हमला करने वाले देशों को हथियार की बिक्री पर रोक लगाने का इटली का फैसला शांति प्रक्रिया और आम लोगों के समर्थन में उठाया गया सार्थक कदम है। अल जजीरा टीवी चैनल के अनुसार इतालवी सरकार ने सऊदी अरब और यूएई को मिसाइल और बम बेचने के लाइसेंस को रद्द कर दिया और वो सऊदी गठबंधन को आगे से नए हथियार नहीं बेचेगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी हाल ही में एक अमरीकी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दी थी कि अमरीकी सरकार ने भी ट्रंप सरकार के दौर में कई अरब डॉलर के हथियार के सौदों की समीक्षा के साथ ही यूएई को F-35 फाइटर जेट और सऊदी अरब को गाइडेड मिसाइल बेचने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
दिल्ली में इसराइली दूतावास के करीब धमाके के बाद ज़ायनी विदेश मंत्रालय भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। ज़ायनी विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि करते हुए कि नई दिल्ली में इसराइली दूतावास के करीब धमाका हुआ है कहा कि वो इस घटना के संबंध में भारतीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। जेरूसलम पोस्ट के अनुसार इसराइली विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा है कि आरंभिक रिपोर्टों से लगता है कि यह कार्रवाई भावनाओं को भड़काने के लिए की गई है। इस बयान में आगे आया है कि भारतीय अधिकारी इस घटना की समीक्षा कर रहे हैं और संबंधित इसराइली अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इसी तरह ज़ायनी विदेश मंत्रालय के बयान में आया है कि इस घटना में न तो कोई जानी नुकसान हुआ है और न ही दूतावास की इमारत को कोई नुकसान पहुँचा है। उधर नई दिल्ली पुलिस ने अलग बयान में कहा है कि यह घटना एक देसी बम धमाके की है जो इसराइली दूतावास के करीब फटा जिससे घटनास्थल के करीब पार्क हुई 3 कारों के शीशों को नुकसान पहुंचा। जेरूसलम पोस्ट ने इसराइली अधिकारियों के हवाले से लिखा कि यह धमाका आतंकवादी कार्रवाई थी। गौरतलब है कि 13 फरवरी 2012 को नई दिल्ली में ज़ायनी दूतावास के कर्मचारी की कार में बम धमाका हुआ था जिसमें वो घायल हुआ था।
भारत ने 15 ईरानी मछुआरों को आज़ाद कर दिया है। इन मछुआरों को बेंगलुरु में रिहा किया गया। नई दिल्ली में ईरानी राजदूत ने शुक्रवार को बताया कि ये मछुआरे करीब 1.5 साल से कैद में थे। ये मछुआरे चाबहार के हैं जो पिछले साल मछली का शिकार कर रहे थे। خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا وہ شکار ہو گئے اور ایمرجنسی میں مدد کے لیے بھارت کے جل کھیتر میں داخل ہو گئے تھے۔ چونکہ بھارت کے جل کھیتر میں بنا اجازت کے یہ داخل ہوئے تھے، اس لیے انہیں قید کر لیا گیا۔ بھارت میں ایران کے راجدوت نے بتایا کہ یہ مچھوارے شکروار کی رات اپنے وطن ایران لوٹ گئے۔ یہ مچھوارے نئی دلی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔
اتری سیریا کے عفرین نگر میں ہونے والے کار بم وسفوٹ میں اب تک کئی لوگ ہتات اور گھائل ہوئے ہیں۔ سیریا کی سرکاری سماچار ایجنسی سانا کے انوسار یہ وسفوٹ عفرین نگر کے اسنا کھیتر میں ہوا۔ پرتیکش درشیوں کا کہنا ہے کہ اس کار بم وسفوٹ میں کم سے کم 6 لوگ مارے گئے اور 15 لوگ گھائل ہوئے ہیں۔ پچھلے مہینے عفرین کے مانواधिकार संस्था نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ پچھلے 3 ورشوں سے جب سے یہ نگر ترکی کا سمرتھن پراپت آتنکوادیوں کے نینترن میں ہے، تب سے اب تک ہونے والے وبھن وسفوٹوں اور حملوں میں یہاں کے 600 سے ادھک نواسی مارے جا چکے ہیں۔ اسی دوران وہاں پر 7,343 سے ادھک اپہرن کے کیس ہوئے ہیں۔ ترکی کی سینا نے 2 ابھیانوں کے انترگت اتری سیریا کے لگ بھگ 4,000 کلومیٹر کے بھاگ پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سیریا کی سرکار اس کام کو اویدھ بتاتے ہوئے اپنے بھو بھاگ سے ترکی کے سینکوں کی واپسی کی مانگ کرتی آ رہی ہے۔
بھارت نے چین سے ملی سرحد پر بڑی تعداد میں فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ بھارتی راشٹرپتی نے شکروار کو اس بات پر تاکید کی تھی کہ چین سے ملی سرحد پر فوجیوں کی تعداد اس وقت تک کم نہیں ہوگی جب تک ویاپک سہمتی نہیں بن جاتی۔ انہوں نے کہا کہ دیش نے ہمالیائی کھیتر میں چین کے ساتھ ویوادت سرحد پر فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اس سے پہلے بھارتی ودیش منتری نے پچھلے اپریل سے بھارت چین سمبندھوں کے بارے میں گروار کو اپنے بھاشن میں بیجنگ کے ساتھ سمبندھ بحال ہونے کے لیے 8 شرطوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے چین سے پچھلی سہمتیوں کی پوری طرح پابندی کرنے کی بھی مانگ کی۔ الیکھنی ہے کہ بھارت چین کے بیچ سن 2003 سے سیما ورتی متبھید کے بارے میں اب تک 25 بار بات چیت ہو چکی ہے، جس کا امید کے مطابق نتیجہ نہیں نکل پایا۔
امریکہ پوروتری سیریا کے الحسکا علاقے میں ایک اور فوجی چھاونی بنا رہا ہے۔ نیوز ایجنسی سنا کے انوسار امریکی فوجی حسکا کے اوپر نگریہ بھاب الیاربیہ میں نئی چھاونی بنا رہے ہیں۔ سانیا ستروں کا کہنا ہے کہ امریکی فوجیوں نے ہتھیار سہت لاجسٹک ساز و سامان اس اڈے میں پہنچا دیے ہیں۔ پچھلے مہینوں میں امریکہ کے سینکڑوں ٹرک جس میں لاجسٹک ساز و سامان لدے تھے عراق سے سیریا کے الحسکا شہر پہنچے۔ امریکی فوج اور اس کا سمرتھن پراپت سیرین ڈیموکریٹک فورس نامی گٹھ سیریا کے الجزیرہ حسکا اور دیر الزور پرانتوں میں تیل کے کنوؤں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔
امریکہ میں کورونا وائرس کا برٹش ویریئنٹ باہر کے موسم میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر پھیل جائے گا۔ امریکہ میں کورونا وائرس کا برٹش ویریئنٹ بہار کے موسم میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر پھیل جائے گا۔ امریکہ میں الرجی و انفیکشن بیماری کی راشٹری سنستھا کے ندیشک نے سچیت کیا ہے کہ دیش میں بسنت کے موسم کے بیچ میں کورونا وائرس کا برٹش ویریئنٹ بڑے پیمانے پر پھیلے گا۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے انوسار اینتھنی فاؤچی نے شکروار کو بتایا کہ کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کے بارے میں، جسے برٹش ویریئنٹ بھی کہا جا رہا ہے، یہ اندازہ ہے کہ مارچ مہینے کے انت اور اپریل مہینے کی شروعات میں یہ امریکہ میں پھیل جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ بات صاف طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ کیا کورونا وائرس کا دکشن افریقی ویریئنٹ امریکہ میں انفیکشن پھیلانے کا مکھیہ سروت اور پھر بڑے پیمانے پر پھیلنے کا کارن بنے گا یا نہیں۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے وشو سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے، اسلامی گنتنتر ایران کی آواز۔
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह 42 साल पहले पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्वदेश वापस आए थे। पेरिस के निकट एक छोटे से गाँव में रहने वाली महान हस्ती ने दुनिया की एक तानाशाही सरकार का अंत कर दिया था। रोचक बात यह है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने उस तानाशाही सरकार का अंत किया था जिसे पूरब और पश्चिम का समर्थन प्राप्त था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिकी सरकारों ने हम पर जो सबसे बड़ा अत्याचार किया है वो ये है कि पहलवी शासन श्रृंखला को उसने हम पर थोप दिया है। ब्रिटेन की जनसंख्या 6,70,00,000 है। इस दृश्य से कई सप्ताह पहले से कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पूरी दुनिया में ब्रिटेन में सबसे अधिक हो गई है। दूसरे देशों से ब्रिटेन में आने वाले यात्रियों को इस देश की सरकार 10 दिनों तक दृष्टिगत होटल में क्वारंटाइन करना चाहती है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भारत सरकार को फौरन जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये केवल मेरी मांग नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों की मांग है और सरकार को राज्य का दर्जा फौरन बहाल करना चाहिए। ये थी हमारी आज की चर्चा के विषय। श्रोताओं, जैसा कि आपको याद है कि ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह 42 साल पहले पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से स्वदेश वापस आए थे। पेरिस के निकट एक छोटे से गांव में रहने वाली महान हस्ती ने दुनिया की एक तानाशाही सरकार का अंत कर दिया था। रोचक बात यह है कि स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने उस तानाशाही सरकार का अंत किया था जिसे पूरब और पश्चिम का व्यापक समर्थन प्राप्त था। स्वर्गीय इमाम खुमैनी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि अमेरिकी सरकारों ने हम पर जो सबसे बड़ा अत्याचार किया है वो ये है कि पहलवी शासन श्रृंखला को उसने हम पर थोप दिया है। साथ ही मोहम्मद अली कुमी,
42 साल पहले पेरिस के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एक महान हस्ती ने प्रस्थान किया। उस महान हस्ती ने जो नोफेल लोशातो नामक छोटे से गांव में रहती थी दुनिया के एक तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। अमरीकी सरकारों ने हम पर जो सबसे बड़ा अत्याचार किया है वो ये है कि पहलवी शासन श्रृंखला को हम पर थोप दिया। एक अत्याचार जो शाह ने हम पर किया है यह है कि शाह ने वे समझौते किए जो ईरानी राष्ट्र के हितों के खिलाफ हैं और हम उन समझौतों को कोई अहमियत नहीं देते जो राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हैं। न केवल नोफेलोशातो बल्कि पूरे फ्रांस के लोगों को अपने देश में इस महान हस्ती की संक्षिप्त उपस्थिति याद है। नोफेल लोशातो के समस्त लोगों को स्वर्गीय इमाम खुमैनी की उपस्थिति का इतिहास याद है कि वो किस तरह इस छोटे से गांव में रहते थे। ये उपस्थिति समस्त फ्रांसीसियों को याद है। दसियों साल के बाद ये यादगार उपस्थिति वहां के लोगों का इतिहास बन गई है और उसे कदापि भुलाया नहीं जा सकता।
मैंने फ्रांसीसी संचार माध्यमों के जरिए इन्हें पहचाना। कुल मिलाकर कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में इमाम खुमैनी की उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे गांव के मशहूर होने का कारण बनी।
इस साल कोरोना महामारी के कारण ईरान की इस्लामिक क्रांति की सफलता की वर्षगांठ पर क्रांति के संस्थापक इमाम खुमैनी के आवास पर उपस्थिति असंभव हो गई है। बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि यूरोपीय देशों में कोरोना के कारण स्वास्थ्य निर्देश कड़े कर दिए गए हैं और स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वालों के लिए उनके रहने के आवास में उपस्थिति मुमकिन नहीं है। नौफिल लुशात तो हालांकि एक छोटा और बहुत शांतिपूर्ण गांव है, परंतु ईरान और विश्व के इतिहास में वो बहुत बड़ी क्रांति की यादगार है। नौफिल लुशातों का परिचय शायद पेरिस के समीप एक छोटे से गांव के रूप में किया जा सकता है, लेकिन 118 दिनों तक स्वर्गीय इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के इस गांव में रहने के कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़े परिवर्तन के केंद्र के रूप में देखा जाता है। पेरिस के उपनगरीय इलाके नौफिल लुशातों से IRIB के लिए शहसवार हुसैनी की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
श्रोताओ, ब्रिटेन की जनसंख्या 6,70,00,000 है। इस बात के दृष्टिगत कई सप्ताह पहले से कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पूरी दुनिया में ब्रिटेन में सबसे अधिक हो गई है। दूसरे देशों से ब्रिटेन में आने वाले यात्रियों को इस देश की सरकार 10 दिनों तक दृष्टिगत होटल में क्वारंटाइन करना चाहती है। कोरोना के जिन मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। पूरी जानकारी के साथ साथी रविश जैदी।
आजकल ब्रितानी अधिकारियों की बातों पर इस देश के लोग कम ही विश्वास करते हैं, विशेषकर स्वास्थ्य और उपचार के क्षेत्र में। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में कहते हैं, हमारी स्वास्थ्य सेवाएं समाप्त होने के निकट पहुंच रही हैं और कोरोना के जिन बीमारों को वेंटिलेटर पर रखा गया है उनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। ब्रिटेन में टीके के जिम्मेदार मंत्री ने लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि उन्हें दूसरे देशों में छुट्टी बिताने की प्रतीक्षा में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये संभव है कि स्थिति सामान्य न हो। स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी उम्मीद भरी बातें नहीं कर रहे हैं।
लंबे समय तक हमें इस स्थिति से मुक्ति नहीं मिलेगी।
दसियों हजार लोगों का प्रतिदिन कोरोना से संक्रमित होना स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टरों के थक जाने का कारण बना है।
इस विभाग के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में हमें कठिनाइयों का सामना है। केवल ईश्वर जानता है कि इतने सारे मरीजों के साथ क्या किया जाए। हम बहुत चिंतित हैं।
ब्रिटेन की जनसंख्या 6,70,00,000 है। इस दृष्टि से कई सप्ताह पहले से कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या पूरी दुनिया में ब्रिटेन में सबसे अधिक हो गई है। दूसरे देशों से ब्रिटेन में आने वाले यात्रियों को इस देश की सरकार 10 दिनों तक दृष्टिगत होटलों में क्वारंटाइन और 1,000 से 1,500 पाउंड तक का क्वारंटाइन के खर्च को अदा करने में सहयोग करना चाहती है। लंदन से IRIB के लिए मुश्तबा कासिमजादे की रिपोर्ट।
गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि भारत सरकार को जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा फौरन बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये केवल मेरी नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों की मांग है और सरकार को राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि हम नई दिल्ली से ये अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दें। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि जहां तक धारा 370 का ताल्लुक है, हमारा ये मानना है कि विभिन्न पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं और मार्च में इसकी सुनवाई होनी है। हम उससे पहले नई दिल्ली से ये अपील करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दें।
बहुत सारी पार्टीज सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो जब सुप्रीम कोर्ट गई हुई है वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में डे टू डे हियरिंग की बात रखी है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमको जो लोग सुप्रीम कोर्ट की ओर रास्ते गए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले में,
उन्होंने कहा कि ये हमारी ही मांग नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी वासी हैं वो नई दिल्ली से ये मांग करते हैं कि राज्य का दर्जा तुरंत वापस दिया जाए। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि कश्मीर के कई दल इस हवाले से एकजुट हो गए हैं, परंतु कांग्रेस ने उनसे दूरी बनाई हुई है। जो दल इकट्ठे हुए हैं उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की राज्य शाखा और पीपल्स मूवमेंट शामिल हैं, जबकि इस संगठन से पीपल्स कॉन्फ्रेंस हाल ही में अलग हो चुका है। और गुलाम अहमद मीर ने भी बड़े एहतियात के साथ बातें की और उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ उसे भूलकर अब नई परिस्थितियों को स्वीकार करना होगा। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बार फिर कहा है कि कश्मीर के हवाले से जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धारा 370 तरक्की की राह में रुकावट थी, उसे अब दूर कर दिया गया और यहां पर तमीर तरक्की बहुत जल्द दिखने लगेगी। उन्होंने कहा कि मेगा प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इस बीच कोरोना वायरस का कहर भी जारी है, परंतु अब इसमें काफी ठहराव आया है, ऐसा जम्मू कश्मीर प्रशासन का कहना है। परंतु अब भी जम्मू कश्मीर प्रशासन ने तमाम लोगों पर बल दिया कि वो मास्क का उपयोग जरूरी अमल में लाएं। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान ब्रह्मांड।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में ईरान में रेगिस्तान की दुल्हन कहलाने वाले सुंदर शहर तवस के बारे में बताएंगे।
दोस्तों, ईरान के रेगिस्तानी इलाके के बहुत ही सुंदर शहरों में से एक तवस शहर है। ये नगर तवस जिले का केंद्र है। इस शहर में प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आकर्षण की भरमार है। तवस की भौगोलिक स्थिति मन में ईरान के केंद्रीय मरुस्थलीय इलाके की तस्वीर चित्रित करती है, जो सूखा और रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन जब हम तवस शहर और उसके आसपास के गांवों का भ्रमण करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंजर का सामना होता है। तवस हरा भरा और साफ सुथरा शहर है। इस शहर की सड़कों के बीचों बीच में लाइन से खजूर, जैतून और संतरे की प्रजाति के पेड़ लगे हुए हैं, जिसे फारसी में नारंज कहते हैं। इस इलाके के गांव में पाए जाने वाले खट्टे संतरे के बड़े बड़े बाग, खजूर के बाग और अनेक चश्मे हर आने वाले का दिल मोह लेते हैं। ईरान के केंद्रीय मरुस्थल में स्थित तवस स्वर्ग की तरह लगता है। इस इलाके के लोग मेहरबान, मेहमान नवाज और सभ्य हैं। वे खुले दिल से मेहमानों का स्वागत करते हैं।
जिन लोगों को अवशेषों व ऐतिहासिक इमारतों में रुचि है, उनके लिए तवस के नगर कोट के अवशेष बहुत ही आकर्षक दर्शन स्थल है। तवस का नगर कोट इलाका स्थानीय लोगों के बीच पुराने किले के नाम से मशहूर है, जो शहर की सबसे प्राचीन इमारतों में से एक है, जिसकी शान के अब कुछ पहलू ही बचे हैं। आज जिस किले के ऐतिहासिक अवशेष मौजूद हैं, कभी इस किले में नासिर खुसरो ठहरे थे। ये किला अपने हजार साल के जीवन में बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का गवाह रहा है।
तबस का एंथ्रोपोलॉजी अर्थात मानव शास्त्र का म्यूजियम बाग खान नामी इलाके में स्थित है। ये म्यूजियम 4400 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर फैला है। इसकी इमारत 600 वर्ग मीटर के एरिया पर बनी है। यह म्यूजियम इमादुल मलिकी के वक्फ की जगह में बनाया गया है। वास्तव में ये म्यूजियम शहर के प्राचीन मशहूर हमाम खान की जगह पर बना है। इस म्यूजियम में 500 तरह की प्राचीन व सांस्कृतिक अहमियत की चीजें मौजूद हैं, जो तबस की जनता की ओर से उपहार में दी गई हैं। इस म्यूजियम के दो भाग हैं, एक ढांचे में मूर्तियां व दूसरे भाग में शोकेस है, जिसमें प्राचीन समय के लोगों के काम, पारंपरिक पेशे और आर्थिक अहमियत के उपकरण रखे हुए हैं। म्यूजियम में मौजूद सभी चीजें, फ्रेम और ढांचे तबस जिले की मशहूर हस्तियों, पेशों, परंपराओं, रीति रिवाजों और संस्कृति का परिचय कराते हैं। क्षेत्र के लोगों के पेशे का परिचय कराने वाले भाग में तामकारी, चटाई की बुनाई, हाथ से बुने जाने वाले विशेष जूते, सूत की कताई, कालीन की बुनाई का परिचय मिलता है। इसी तरह इस भाग में ऊँटों के कारवान और ढोल बजाने के समारोह का भी परिचय मिलता है।
तबस के मानव शास्त्र के म्यूजियम में जो जरूरी चीजें और दस्तावेज रखे हुए हैं, वे 80 से 300 वर्षों के बीच विभिन्न दौर के हैं। इस शहर में ऐतिहासिक इमारतों के अलावा ऐसे मरुस्थलीय आकर्षण भी हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं और हर आने वाले को अपनी ओर सम्मोहित करते हैं। तबस के मरुस्थलीय इलाकों के परिचय से पहले इस इलाके के एक मशहूर आकर्षण का परिचय कराते हैं, जो तबस शहर के प्रतीक के रूप में पहचाना जाता है। ये एक बाग है जिसका नाम बागे गुलशन है। ये बाग जंदिया शासनकाल में लगाया गया, जो ईरान के बहुत ही सुंदर बागों में से एक है। ये बाग लगभग 7 हेक्टेयर के एरिए में फैला हुआ है और इसके बीच में बड़ा सा हौज है, जिसमें पत्थर के 3 फव्वारे लगे हुए हैं। इन फव्वारों में कुएं से पानी आता है। इन कुओं को ऊंची और नीची ज़मीन में इस तरह खोदा जाता है कि भूमिगत ज़मीन में पानी के दबाव से फव्वारों से पानी निकलता है। इस बाग के प्राकृतिक झरने और प्राकृतिक स्विमिंग पूल प्रकृति के आश्चर्य में हैं, जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
इस बाग में सबसे पुराने पेड़ खजूर के हैं। खजूर के पेड़ों के आसपास अनार, सिट्रस फल और सजावट के लिए लगाए जाने वाले पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इस क्षेत्र में एक सुंदर बाग है जो वास्तुकला की नज़र से छोटा ताजमहल लगता है। वनस्पतियों और बाग में बने हुए हाउस के साथ इस इमारत ने बाग के आकर्षण में 4 चांद लगा दिए हैं। बाग गुलशन अकेला ईरानी बाग है जो चौकोर है और बहुत ही सुंदर है। इसे ईरान के बहुत सुंदर बागों में गिना जाता है। 1976 में इस बाग को राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। आपके लिए ये जानना भी रोचक होगा कि इस इमारत में भूमिगत 200 मीटर के एरिया में जियोलॉजी का म्यूजियम है। इस म्यूजियम में नाना प्रकार के पत्थरों और 50 करोड़ साल पुराने जीवाश्म और खनिज पदार्थ रखे हुए हैं।
तबस शहर में एक और खूबसूरत जगह मुर्तजा अला चश्मा है। ये चश्मा तबस शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिस जगह ये चश्मा है, वहाँ का मौसम बहुत सुहावना रहता है। ये सुंदर चश्मा ऊंची ऊंची दीवारों वाले दर्रे के बीच में स्थित है। इस चश्मे तक पहुँचने के लिए बहुत ही सुंदर रास्ते को पैदल तय करना पड़ता है।
आमतौर पर गर्म पानी के चश्मे ऐसे प्राकृतिक आकर्षण हैं जहां सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। ये चश्मा आम गर्म चश्मों की तरह नहीं है, बल्कि ये ठंडे और गर्म पानी का प्राकृतिक संगम है। ये चश्मा या सोता 300 मीटर तक एक साथ बहता है। एक ओर गर्म पानी की गर्मी और दूसरी ओर ठंडे पानी की ठंड को महसूस किया जा सकता है। गांव के पास के चश्मों से मुख्य नदी में गिरने वाले पानी का कुछ हिस्सा गर्म और कुछ ठंडा होता है। इसी वजह से नदी में से दो अलग अलग जगह के पानी के तापमान में 10 या उससे ज्यादा डिग्री का फर्क होता है। पानी में मौजूद खनिज स्रोतों के ठंडे और गर्म पानी के आपस में मिलने में रुकावट बनते हैं। चश्मे के पानी से इलाके के खेत और बागों की सिंचाई होती है। इसी तरह मुर्तजा अली चश्मे का पानी त्वचा और मांसपेशियों की बीमारी के लिए भी फायदेमंद है। इस चश्मे से कुछ दूर पर शाह अब्बासी बांध भी स्थित है।
शाह अब्बासी बांध को देखने के लिए तबशहर से 27 किलोमीटर दूर खरव नामी गाँव जाना पड़ता है। ये गाँव पर्यटन आकर्षणों में शामिल है। ये बांध अपनी वास्तुकला के लिए ईरान में बहुत ही मशहूर बांध है। शाह अब्बासी बांध 60 मीटर ऊंचा है। इस बांध का सबसे ऊपरी भाग सिर्फ 1 मीटर चौड़ा है। ये बांध करीब 700 साल पहले एक दूसरे के बहुत निकट दो पहाड़ों के बीच बनाया गया है। इसे ईंट से बनाया गया है, जबकि उसके सबसे ऊपरी भाग के बनाने में पत्थर का इस्तेमाल हुआ है।
शाह अब्बासी बांध की वास्तुकला इस महत्वपूर्ण बांध को बनाने में ईरानी वास्तुकारों की काबिलियत का पता देती है। कुछ इतिहासकार इस बांध को दुनिया का सबसे सकरावा तंग और कमान की तरह बनने वाले बांधों में सबसे पुराना बांध बताते हैं। इस बांध को इस तरह बनाया गया है कि इसके पीछे तलछट इकट्ठा नहीं होती। मौजूदा हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि ये बांध हजारों साल इसी तरह अपना मुख्य काम अंजाम दे सकता है। अतीत में शाह अब्बासी बांध को शहर में पानी के प्रवेश को काबू में करने के लिए इस्तेमाल करते थे।
तवस का और दर्शनीय स्थल एक दर्रा है जिसका नाम है काल सर दर। ये सुंदर दर्रा इसी नाम के मैदानी इलाके में स्थित है। यह दर्रा दूर से नजर नहीं आता। काल सर दर नामी मैदान में चलते चलते अचानक सामने खूबसूरत दर्रा नजर आता है, जिसे देखकर पर्यटक सम्मोहित हो जाते हैं। तवस का एक और दर्शनीय स्थल नमक नदी है। इसका एक और नाम काल तवस भी है। ऐसी नदी कम ही जगह पाई जाती है। ये प्राकृतिक नमूना तवस शहर के 20 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में और मोहम्मदाबाद गांव से 8 किलोमीटर दूर है। ये नदी प्रकृति की अद्भुत छटा बिखेरती है। ये नदी नमक के क्रिस्टल या बिल्लौर से भरी हुई है।
आखिर में आपको तवस के सबसे अहम आकर्षण यानी इसके मरुस्थल के बारे में बताते चले। असल में लोग तवस मरुस्थल को देखने आते हैं। रेगिस्तान की नरम व गर्म रेतों पर चलने की इच्छा रखने वालों के लिए कबीर हलवान उचित जगह है। ये मरुस्थल तवस से 90 किलोमीटर पूर्वोत्तर में हलवान नाम के गांव के पास स्थित है। इस मरुस्थल में नाना प्रकार के वनस्पतियां उगती हैं। हलवान गांव के पास एक गुफा है जो इसी गाँव के नाम से जानी जाती है। तवस के बहुत ही आकर्षक स्थलों में हलवान गुफा भी शामिल है। इस गुफा के पत्थरों का अनुसंधान करने वालों का कहना है कि ये गुफा 16 करोड़ साल पहले मिडिल जुरासिक पीरियड में अस्तित्व में आई है। दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम तक के लिए हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
नया सवेरा।
मित्रों, कार्यक्रम नया सवेरा लेकर उपस्थित हैं, जिसमें ब्रिटेन के इब्राहिम क्लिंटन के बारे में चर्चा करेंगे। जहरा जैदी और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार करें।
ग्यारह सितंबर सन 2001 को कुछ लोगों ने न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार संगठन की जुड़वां इमारतों पर हमला किया था। ये हमला विमानों से किया गया था। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। आक्रमणकारियों को मुसलमान बताया गया था। इस आतंकवादी हमले पर पूरे विश्व में व्यापक स्तर पर प्रतिक्रियाएं आई। इस आतंकवादी हमले की संसार के सभी लोगों ने कड़ी निंदा की, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से संबंधित हों। हालांकि पश्चिमी संचार माध्यमों ने 11 सितंबर के हमले के बाद मुसलमानों को लक्ष्य बनाकर इस्लाम के विरुद्ध व्यापक स्तर पर दुष्प्रचार करने आरंभ कर दिए।
बात इतनी बढ़ गई कि तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसे नए सलीबी युद्ध या क्रूसेड के आरंभ की संज्ञा दी। इन्हीं दुष्प्रचारों के बीच अमरीका ने सन 2001 में अफगानिस्तान पर और सन 2003 में इराक पर चढ़ाई कर दी। अफगानिस्तान और इराक में जो निर्दोष मुसलमान मारे गए, वो तो अपनी जगह पर पूरे विश्व में मुसलमानों के विरुद्ध नफरत फैलती चली गई। संचार माध्यमों द्वारा फैलाई गई इस नफरत से बहुत से लोग प्रभावित हुए और वे मुसलमानों के विरुद्ध हो गए। पश्चिमी संचार माध्यमों द्वारा किए जा रहे इस्लाम विरोधी दुष्प्रचारों से जो आम लोग प्रभावित हुए, उनमें से एक इब्राहिम क्लिंटन भी थे। उन्होंने मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने की ठान ली। ब्रिटेन के रहने वाले इब्राहिम क्लिंटन ने सारे मुसलमानों को आतंकवादी समझते हुए उनके विरुद्ध ऐसा अभियान चलाने की ठानी जिसके माध्यम से उनसे बदला लिया जाए।
इब्राहिम क्लिंटन ब्रिटेन के रहने वाले हैं। वे ईसाई धर्म के अनुयायी थे। ब्रिटेन के अन्य युवाओं की ही भांति इब्राहिम भी अपना अधिकांश समय मनोरंजन और बेकार के कामों में गुजारते थे। अपने बारे में वे कहते हैं कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जाया करता था और शराब का भी सेवन करता था। हम लोग अपने जीवन को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने के प्रयास करते थे। हम अपने जीवन को हंसी खुशी में गुजारने के पक्षधर थे। मेरे विचार जैसे थे, उस प्रकार के युवाओं के साथ मिलकर मैं अपनी जिंदगी आनंद से गुजार रहा था।
खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि पश्चिम में अधिकांश युवा लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं। इस प्रकार के जीवन से वे जीवन के मूल लक्ष्यों से दूर होते जाते हैं और अपना अधिकांश समय खेल कूद, मनोरंजन और व्यर्थ कामों में गुजारते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के युवाओं के बीच नशा करने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इनमें कुछ शराब के आदि होते हैं तो कुछ नशीले पदार्थों के। वे अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत से अनैतिक काम करते हैं और मृत्यु के बाद वाले जीवन की ओर से निश्चेत रहते हैं। दूसरे शब्दों में, इस तरह के लोग अपनी सृष्टि के उद्देश्य को भूलकर सांसारिक माया मोह में घिर जाते हैं। आम लोगों की इस आदत से पश्चिमी राजनेताओं को फायदा पहुंचता है, क्योंकि ऐसे में जनता का ध्यान राजनेताओं के बुरे कर्मों और पर्दे के पीछे किए जाने वाले कामों की ओर नहीं जाता।
पश्चिमी संचार माध्यमों के इस्लाम विरोधी दुष्प्रचार ने इब्राहिम क्लिंटन को बहुत प्रभावित किया। इस बारे में उनका कहना है कि 11 सितंबर की घटना से पहले मैं मुसलमानों को नहीं जानता था। हालांकि उस समय मुझको 11 सितंबर की घटना के बारे में बहुत अधिक मालूम नहीं था, किंतु जैसे ही ये खबर आम हुई कि विश्व व्यापार संगठन की इमारतों पर हमला कर दिया गया है, तो उस समय मेरे दोस्तों का ये कहना था कि आतंकवादियों ने अमरीका के विरुद्ध खुलकर युद्ध का फैसला कर लिया है। हालांकि इससे पहले तक मैंने आतंकवादी शब्द सुना ही नहीं था।
ये वास्तविकता है कि जब किसी को समाज के महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान नहीं होता, तो संचार माध्यम अपने सुनियोजित कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को प्रभावित करके उनकी सोच को बदल देते हैं। ابراہیم کلنگٹن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا اور وہ بہت ہی جلدی سنچار مادھیموں کے جال میں پھنس گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے من میں مسلمانوں کے پرتی نفرت بھر چکی تھی۔ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو میں اس سے سمبندھت خبروں پر گہری نظر رکھتا تھا۔ میرا ماننا تھا کہ جن مسلمانوں نے اتنی خطرناک گھٹنا کو انجام دیا ہے ان کو اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔
مسلمانوں کے ورودھ ابراہیم کلنٹن کی نفرت اتنی ادھک بڑھ چکی تھی کہ وہ افغانستان جا کر یدھ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار وہاں جانے کا پریاس کیا۔ میں چاہتا تھا کہ یدھ میں بھاگ لے کر ادھک سے ادھک مسلمانوں کی ہتیا کروں تاکہ اپنے دیش اور اپنے پریوار کو کسی سیما تک سرکشت رکھ سکوں۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اس سمے میرا یہ سوچنا تھا کہ پوری دنیا کے لیے مسلمان سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس پرکار وہ سوچ رہے تھے کہ ادھک سے ادھک مسلمانوں کو مار کر اس خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جس سمے ابراہیم کلنٹن کی یہ سوچ تھی کہ سارے مسلمان آتنکوادی ہیں، اس سمے انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ سنسار کے بہت سے حصوں میں مسلمان انیہ دھرم کے ماننے والوں کے ساتھ شانتی پورن جیون کیوں گزار رہے ہیں، جبکہ امریکہ اور برٹن جیسے دیش نردوش مسلمانوں کا جنسنہار کر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے سنے ہوئے ہیں۔
ایسا لگ رہا تھا کہ مانو ایشور کو یہ منظور نہیں تھا کہ ابراہیم کلنگٹن کے ہاتھ نردوش مسلمانوں کے خون سے رنگیں۔ یہ ایک ایسا سنیوگ ہے کہ اسلامی ورودھی ایک کارکرم نے ہی کلنگٹن کو صحیح راستہ دکھایا۔ اس بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں ریڈیو کارکرم سن رہا تھا۔ یہ ریڈیو امریکی سرکار سے سمبندھت تھا۔ اس میں مسلمانوں کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا تھا۔ کلنگٹن کے انوسار میرے لیے یہ بہت ہی آشچرے کی بات تھی کہ کارکرم میں جس ویکتی کے بارے میں بہت غلط اور بری باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو کروڑوں کی سنکھیا میں لوگ کیوں مانتے ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یدی وہ برے انسان تھے تو کیوں پوری دنیا کے مسلمان ان کو اچھا بتاتے ہیں اور ان کا سمان کرتے ہیں۔ اسی کے بعد میں نے یہ جاننے کا پریاس شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا واستوکتا ہے۔ ابراہیم کلنگٹن یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا سارے ہی مسلمان آتنکی ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کو آتنکواد کی شکشا دی جاتی ہے؟ کیا یہ لوگ عام لوگوں سے ہٹ کر ہیں؟ اپنے انہیں سوالوں کے جواب پانے کے لیے ابراہیم کلنگٹن نے کھوج بین شروع کر دی۔
نیٹ پر جب ابراہیم نے اس بارے میں سرچ کی تو انہیں بہت سی جگہوں پر ورودھابھاسی چیزیں دکھائی دیں جسے وہ سویکار نہیں کر سکتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سمے میں کوئی منش اچھا اور برا نہیں ہو سکتا۔ نیٹ پر پیغمبر اسلام کے بارے میں ورودھابھاسی باتوں کو دیکھ کر ابراہیم میں اس سمبندھ میں ادھک جاننے کی جگیاسا بڑھ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے دھارمک گرنتھ کو پڑھوں۔ اب انہوں نے قرآن کی تلاش شروع کی اور ایک وشو ودیالیہ سے پڑھنے کے لیے قرآن لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب تک میرے من میں یہی وچار تھا کہ یہ آتنکوادیوں کی کتاب ہے جس میں میں دیکھوں گا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میرے من میں ابھی تک یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیش کی گپتچر سنستھا میرے پیچھے پڑ جائے کیونکہ میں آتنکوادیوں کی کتاب کو اپنے گھر لے آیا ہوں۔
کچھ سمے کے بعد قرآن نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا قرآن پڑھنے کے بعد یہ بات میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ آتنکواد سکھانے والی کتاب نہیں ہے۔ اب ابراہیم نے دھیرے دھیرے مسجد جانا شروع کر دیا۔ میرا ادھک سمے مسجد میں بیتنے لگا۔ قرآن پڑھنا مجھ کو اچھا لگنے لگا۔ انتتہ ابراہیم کلنگٹن کو یہ بات پوری طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ اسلام شانتی کا دھرم ہے اور یہ دھرم آتنکواد نہیں سکھاتا۔ حالانکہ ابراہیم کلنگٹن کی ماں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ ان کا بیٹا مسلمان ہو جائے۔ وہ مانتی تھیں کہ اس نے غلط راستے کا چین کیا ہے۔ کچھ سمے بعد جب ابراہیم کے سوبھاؤ میں پریورتن آیا تو ان کی ماں نے دیکھا کہ وہ پہلے سے بہت بدل گیا ہے۔ اب ابراہیم کی ماتا نے اسے ایک مسلمان کے روپ میں سویکار کر لیا تھا۔
وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کھوج کرتے ہیں، ان کے لیے ابراہیم کلنٹن کی صلاح یہ ہے کہ اپنے سوالوں کے جوابوں کو آرمبھ میں انٹرنیٹ پر نہ کھوجیں۔ حالانکہ انٹرنیٹ پر بہت اچھی جانکاریاں بھی اپلبدھ ہیں اور غلط بھی۔ جب کوئی ویکتی اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تو اسے انٹرنیٹ کا سہارا نہ لے کر کسی دھرم گرو سے سہایتا لینی چاہیے۔ ایسے میں کسی جانکار سے بات کرتے رہنا چاہیے اور ہو سکے تو مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ انت میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام ایشوریہ دھرم ہے جس کے بارے میں دشپرچار ادھک کیا جاتا ہے۔
شروتا مترو، اسی کے ساتھ ہمارا کاریکرم اپنے انت کو پہنچا۔ ہمیں انمتی دیں، خدا حافظ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے اور شروتاؤں سبھا کے انت میں آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ راشٹرپتی نے کہا کہ رانی راشٹ نے تانا شاہی اور سامراج واد کو ایک ساتھ دھول چٹائی ہے۔ ایران نے کہا کہ پرمانو سمجھوتے میں سعودی عرب کی کوئی جگہ نہیں۔ سازشوں کے باوجود ایران و عراق سمبندوں میں وستار ہو رہا ہے۔ اور بھارت میں اسرائیلی دوتاواس کے نکٹ سادھارن دھماکے پر پرتکریاؤں کا کرم جاری ہے۔ تو شروتاؤں، اسی کے ساتھ ہمیں انمتی دیں، خدا حافظ۔